नमस्कार।
आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही गहरे उद्बोधन पर बात करने वाले हैं।
हाँ, जिसका शीर्षक है गुरु तत्व की गरिमा और महिमा।
बिल्कुल।
इसमें ना जीवन जीने की कला और सफलता के कुछ बुनियादी सूत्र हैं। मुझे लगता है ये हम सबके लिए समझना बहुत जरूरी है।
हाँ, उन्होंने जीवन की तीन कह सकते हैं मुख्य शक्तियों की बात की है।
अच्छा, कौन सी तीन शक्तियाँ?
पहली है श्रम की शक्ति, मतलब हमारे कर्म की। दूसरी है ज्ञान, हमारी सोच, हमारा नजरिया।
और तीसरी?
तीसरी है हमारे व्यक्तित्व की शक्ति, हमारी अपनी रूहानी ताकत।
तो चलिए एक एक करके समझते हैं इनको। शुरुआत करते हैं श्रम शक्ति से।
हाँ, श्रम शक्ति मतलब ये सिर्फ हाथ पैर चलाना नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वो शक्ति है जो भगवान ने हमें दी है, जिससे हम दुनिया को संवारते हैं। आप सोचिए, जमीन तो हमेशा से थी।
सही बात है।
लेकिन इंसान के श्रम ने ही तो उसे उपजाऊ बनाया, उसमें से सोना, धातु, अनाज निकाला।
और नदियों पर पुल बनाए, नाव चलाई, बांध बनाए, ये सब श्रम का ही तो नतीजा है।
हाँ, और आचार्य जी कहते हैं कि दौलत पसीने से आती है, किसी के आगे हाथ फैलाने से नहीं।
बिल्कुल, श्रम से ही आप कुछ कमाते हैं और उसी से उसकी रक्षा भी करते हैं।
और सिर्फ पैसा ही नहीं, अच्छी सेहत, पढ़ाई लिखाई, कला, तहजीब, ये सब भी तो मेहनत से ही आता है।
और ये स्वावलंबन सिखाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। पूज्य गुरुदेव ने साफ कहा है कि बेईमानी से तो सिर्फ छीना झपटी हो सकती है, कुछ बना नहीं सकते आप।
ये तो हुई पहली शक्ति। अब दूसरी शक्ति पर आते हैं, ज्ञान की शक्ति
या विचारणा की शक्ति।
हाँ, और ये बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इससे मिलने वाली खुशी जो है वो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती।
सही कहा, वो तो हमारे अंदर के संतुलन, हमारे नजरिए पर टिकी है। जैसे आसमान में बादल छाए हों,
हाँ,
तो कोई देखकर उदास हो सकता है और कोई उसी में कुदरत की खूबसूरती देख सकता है। बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव का अपना उदाहरण है, गंगोत्री यात्रा कितनी कठिन थी, लेकिन उन्होंने उस अनुभव पर सुनसान के सहचर लिख दिया, मतलब मुश्किल में भी आनंद खोज लिया।
वाह, तो स्वर्ग और नर्क वो हमारे अपने दृष्टिकोण में ही हैं।
हाँ, यही तो दर्शन है, फिलॉसफी है, चीजों की गहराई में जाकर खुशी ढूंढना। दारा शिको का उदाहरण दिया उन्होंने कि कैसे उपनिषद पढ़कर उसे एक अलग ही मस्ती मिली।
तो ये ज्ञान सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है।
बिल्कुल, और खुशी अंदर से आती है, और इसे दूसरों में बांटना, वो कहते हैं सोने चांदी के दान से भी बड़ा है।
हाँ, क्योंकि आज इंसान खुशी के लिए ही तो सबसे ज्यादा तरस रहा है।
तो ज्ञानी वही है जो खुशी ढूंढना भी जानता है और बांटना भी।
अच्छा, अब आते हैं तीसवी शक्ति पर, व्यक्तित्व का वजन, रूहानी शक्ति। ये क्या है?
ये वो अंदरूनी ताकत है, वो चुंबकीय खिंचाव जो कुछ लोगों में होता है, वो अपनी मौजूदगी से ही माहौल बदल देते हैं।
जैसे?
जैसे बुद्ध थे, गांधी जी थे, विवेकानंद। अब देखिए, इन लोगों ने दुनिया की सोच को हिला दिया।
हाँ, उनका व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली था।
ये व्यक्तित्व समाज को दिशा देते हैं और कहते हैं कि ये दैवी शक्तियों को भी अपनी तरफ खींचते हैं।
पर ये बनता कैसे है, इतना मजबूत व्यक्तित्व?
ये बनता है श्रद्धा से।
श्रद्धा मतलब विश्वास।
हाँ, पर सिर्फ विश्वास नहीं, सिद्धांतों, आदर्शों, जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसके प्रति अटूट निष्ठा और समर्पण।
हाँ, अच्छा।
यही श्रद्धा है जो पत्थर में भगवान दिखा सकती है या मिट्टी की मूरत में गुरु, जैसे एकलव्य ने किया।
हाँ, एकलव्य और द्रोणाचार्य का उदाहरण।
बिल्कुल, या रामकृष्ण परमहंस के लिए माँ काली का साक्षात हो जाना, मीरा के लिए जहर का अमृत बन जाना, ये सब श्रद्धा की ही तो शक्ति है।
तो ये अंधश्रद्धा नहीं है?
नहीं नहीं, ये अंधश्रद्धा नहीं, ये तो जो श्रेष्ठ है, जो उत्तम है, उसके प्रति गहरी लगन है, निष्ठा है।
और गुरु पूर्णिमा का पर्व वो इसी श्रद्धा से जुड़ा है?
हाँ, उसे इसी श्रद्धा को जगाने और बढ़ाने का अवसर माना जाता है। आचार्य जी समझाते हैं कि गुरु सिर्फ कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है।
तो फिर?
गुरु हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज भी है, हमारा सुपर कॉन्शियसनेस कह लीजिए। और इस अंदर के गुरु के प्रति श्रद्धा और अनुशासन, इसी से सिद्धियां मिलती हैं।
जैसे पूज्य गुरुदेव ने खुद किया।
हाँ, उन्होंने 24 साल तक कठोर तप किया, अनुशासन का पालन किया, जौ की रोटी पर रहे, तब जाकर गायत्री मंत्र की शक्ति को साधा।
शिवाजी का भी उदाहरण देते हैं शायद।
हाँ, कि कैसे उन्होंने गुरु आज्ञा का पालन करके अक्षय तलवार पाई थी। तो बात वही है, भावो ही विद्यते देवा।
मतलब
जहां सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा होती है, वहीं देवता प्रकट होते हैं। बिना श्रद्धा के तो पूजा पाठ भी सिर्फ एक रस्म बन के रह जाती है।
तो गुरु या भगवान वो हमसे समर्पण और अनुशासन चाहते हैं।
बिल्कुल, कर्मकांड से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी आस्था, आपका भाव।
इसी सिलसिले में पूज्य गुरुदेव ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आज के जमाने के बारे में।
हाँ, वो कहते हैं कि आज विचारों का प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, निगेटिविटी बहुत है।
सही बात है।
तो इसे दूर करने के लिए भगवान का एक नया अवतार हो रहा है।
नया अवतार? कैसा अवतार?
ये है प्रज्ञा का अवतार, मतलब विवेक, सही समझ, सद्ज्ञान का अवतार, और ये गायत्री मंत्र के रूप में प्रकट हो रहा है।
अच्छा,
तो गायत्री मंत्र आज के युग की जरूरत है।
हाँ, ये एक तरह से वैचारिक क्रांति का आवाहन है, युग शक्ति गायत्री। उनका कहना है कि ये विश्व मंत्र है, इसमें नए युग का, नए विश्व का बीज छिपा है।
तो हमें क्या करना चाहिए?
इस प्रवाह में शामिल होना चाहिए, गायत्री के सद्ज्ञान को, पॉजिटिव विचारों को लोगों तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। ये अपनी श्रद्धा को और पक्का करने का और युग बदलने में अपनी भूमिका निभाने का एक मौका है, जैसे पिछले अवतारों के समय उनके सहयोगियों ने किया था। अगर हम सारी बातों को समेटे, पूज्य गुरुदेव ने तीन शक्तियां बताई, श्रम से बाहरी उन्नति,
ज्ञान से अंदरूनी खुशी,
और व्यक्तित्व की शक्ति से आत्मिक विकास।
हाँ, और इन सब में खासकर व्यक्तित्व बनाने और भगवान की कृपा पाने के लिए श्रद्धा और अनुशासन, वो सबसे जरूरी है।
बिल्कुल।
और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, पूज्य गुरुदेव ने जिससे विचारों का नया अवतार कहा या प्रज्ञा अवतार, क्या यह सचमुच हमारे समाज की सोच में, हमारी आस्थाओं में एक बड़े बदलाव का इशारा है?
सोचने वाली बात है।
और अगर ऐसा है तो इस बदलाव में हम और आप, हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा और अपनी समझ से कैसे योगदान दे सकता है?
बिल्कुल। इसी विचार के साथ और पूज्य गुरुदेव की शुभकामनाएं के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्।
हाँ, सब सुखी हों, सब निरोगी हों।
आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।
धन्यवाद।
ओम शांति।